इशिका पर उसी का प्रोजेक्ट चोरी करने का आरोप लगाया जा रहा था। इस वक्त वो हॉस्पिटल आई हुई थी क्योंकि राधिका को डिस्चार्ज मिल रहा था और जाने से पहले वो इशिका से मिलना चाहती थी। राजवंश एम्पायर में जो भी हुआ था उसके बारे में राधिका को पता था, इसलिए उन्होंने इशिका से इस चोरी के बारे में पूछा। आयशा ने इशिका को बोलने का मौका नहीं दिया और उस पर अपने लैपटॉप से प्रोजेक्ट चोरी करने का आरोप लगा दिया। इशिका के चेहरे पर छोटी सी सार्कास्टिक स्माइल थी। चोरी आयशा ने की थी और अब वो मासूम बनते हुए इशिका को दोषी ठहरा रही थी। इशिका आयशा की ओर बढ़ी और भौंहें उठाकर बोली, चलो सबको बता देते हैं वो कौन है जिसने दूसरों की चीज़ों को चुराया है। आयशा ने मासूम चेहरा बनाया। वो बोली, मतलब क्या है तुम्हारे कहने का? तुम क्या चाहती हो, मैं यहाँ तुम्हारे झूठ पर पर्दा डालूं या सबसे ये कहूँ कि ये सब एक कोइंसिडेंस था कि तुम्हारा और डॉक्टर मर्चेंट का प्रोजेक्ट गलती से एक जैसा हो गया? इशिका ने उसकी ओर देखकर सख्ती से जवाब में कहा, नहीं, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, बल्कि तुमने मेरा प्रोजेक्ट चुराया था। इशिका ने आयशा पर आरोप लगाया तो आदर्श गुस्से में पागल हो गया। वो उसकी ओर बढ़ा और उसके बाल पकड़कर खींचते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर इल्ज़ाम लगाने की? पहले गलती खुद करो और फिर अपनी बहन पर ही कीचड़ उछाल रही हो तुम, बेशर्म लड़की। राधिका ने आदर्श को इशिका से अलग किया। वो बोली, आदर्श, आप पागल तो नहीं हो गए हैं? आप इशिका पर हाथ उठा रहे हैं, वो बच्ची नहीं रही है। पागल मैं नहीं, ये लड़की हो गई है। तुमने इसकी बात नहीं सुनी, इसकी बातों में घमंड दिखाई दे रहा है। एक अंडर ग्रेजुएट होकर डॉक्टर मर्चेंट से खुद को कंपेयर कर रही है। ये बेवकूफ़ लड़की खुद की हदें नहीं जानती है। ये तुम्हारे प्यार और परवाह के लायक नहीं है, इसे इसके किए की सज़ा भुगतनी होगी, आदर्श ने गुस्से में जवाब दिया। राधिका को अभी भी इशिका की परवाह हो रही थी। वो धीरे से बोली, अगर राजवंश एम्पायर ने पुलिस को बुलाया तो इशिका को जेल जाना पड़ सकता है। मैं इस मामले को अपने तरीके से सॉल्व करना चाहती हूँ। मैं डॉक्टर मर्चेंट से बात कर लेती हूँ। जब तक वो इस मामले में शांत रहेंगे तब तक मामला ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। इतना कहकर राधिका ने अपना मोबाइल निकाला। वो डॉक्टर मर्चेंट से बात करना चाह रही थी। मैं डॉक्टर मर्चेंट को कॉल करने जा रही हूँ, राधिका उन्हें देखते हुए बोली और सीधे डॉक्टर मर्चेंट को व्हाट्सएप कॉल लगा दिया। राधिका के कॉल आने पर इशिका ने अपना मोबाइल बाहर निकाला। वो साइलेंट था। इशिका राधिका के सामने आयशा से कोई बहस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अगर मामला थोड़ा सा भी ज़्यादा बढ़ता तो राधिका की तबीयत ख़राब हो सकती थी। वैसे भी मंडे तक सच सबके सामने आ ही जाना था। वहीं उसकी उम्मीद से परे कुछ अलग ही हुआ। जैसे ही राधिका ने डॉक्टर मर्चेंट को कॉल किया, आयशा घबराते हुए राधिका के पास जाकर बोली, मॉम प्लीज़ नहीं, कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था। आयशा की इस हरकत पर राधिका ने भौंहें चढ़ाकर कहा, लेकिन क्यों नहीं, और तुमने कॉल डिस्कनेक्ट क्यों किया? आयशा ने खुद को नॉर्मल किया और कहा, एक्चुअली नक्श चाहता है कि मामला सामने ना आए और अंदर ही संभाल लिया जाए। अगर मामला बाहर निकला तो इससे डॉक्टर मर्चेंट के लिए मुसीबत हो सकती है। वो राजवंश एम्पायर के खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। आपके चलते डॉक्टर मर्चेंट इशिका के खिलाफ कुछ ना करें पर सारी बात राजवंश एम्पायर पर आ जाएगी। अच्छा, ऐसा है क्या? राधिका ने हैरानी से पूछा। हाँ ऐसा ही है, आयशा ने जवाब दिया। फिर उसने इशिका की तरफ देखा। उसकी आंखों में चालाकी दिखाई दे रही थी। आयशा इशिका से बोली, देखो इशिका, इन सबको हवा देने का कोई फायदा नहीं है। अपनी गलती मानो और डॉक्टर मर्चेंट और राजवंश एम्पायर के सामने एक माफीनामा पेश कर दो। मैं नक्श को कहूंगी कि वो इस मामले को संभाल ले और तुम्हें किसी तरह की सजा ना दी जाए। तुम अगर सोच रही हो कि मिस्टर अभिमन्यु राजवंश तुम्हारी हेल्प कर देंगे तो ऐसा भी नहीं है। मिस्टर राजवंश तुमसे ज्यादा राजवंश एम्पायर के लिए लॉयल है। राधिका परेशान ना हो जाए इसलिए आदर्श ने उसके पास आकर उसके कंधे सहलाकर कहा, राधिका देखा तुमने, हमारी बेटी सबरुच कितना अच्छे से संभाल रही है। तुम बेवजह फिक्र कर रही हो। इशिका को बस एक ऑफिशियली सॉरी कहना है और फिर उसे कोई सजा नहीं दी जाएगी। इशिका इन सबके बीच में नजरें झुकाए हुए चुपचाप खड़ी हुई थी। उसके हाथ में उसका मोबाइल था। उसे बस एक कॉल करने की देर थी और फिर सबके सामने उसके डॉक्टर मर्चेंट होने की सच्चाई आज़ाद हो जाती। लेकिन क्या वो आयशा के झूठ को एक्सेप्ट कर पाती? वो आयशा से बहुत प्यार करती थी और हर माँ बाप की तरह शायद वो आयशा की गलती को नज़रअंदाज कर देती। इशिका अन्याय सहने वालों में से नहीं थी। उसने अलग तरीके से अपना पक्ष रखने का सोचा। उसने राधिका से कहा, मिसेस सिंघानिया, अगर मुझसे प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता तो मुझे झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं थी और ना ही मेरे ऊपर कोई प्रेशर था। डॉक्टर मर्चेंट का प्रोजेक्ट चुराने की भी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि क्या डॉक्टर मर्चेंट ने राजवंश एम्पायर के लिए काम करने के लिए हाँ कह दी थी जो वो उनके लिए कोई प्रोजेक्ट पूरा करेंगे? राधिका सोच में पड़ गई थी। इशिका का कहना सही था, लेकिन तभी आयशा ने कहा, तुम बीच में दूसरी बातें क्यों लेकर आ रही हो? मैंने मॉम से पहले ही बात कर ली थी। मैंने उन्हें बता दिया कि मैंने उनके मोबाइल से डॉक्टर मर्चेंट से बात की थी और उन्होंने राजवंश एम्पायर के लिए काम करने के लिए हाँ कह दिया था। इशिका उसकी बात का कोई जवाब देती उससे पहले आदर्श बीच में बोला, इशिका तुम्हें अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं है ना? यहाँ तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं कर रही है। राधिका तुम्हारे लिए परेशान हो रही है लेकिन तुम हो कि उल्टा उसे ही कसूरवार ठहरा रही हो। आदर्श कुछ पल रुका और फिर दरवाजे की तरफ इशारा करके बोला, अभी के अभी बाहर निकलो यहाँ से। इशिका ने आगे कुछ नहीं कहा और वहां से जाने का सोचा। जाने से पहले उसने एक नजर राधिका की तरफ देखा जो कुछ सोच रही थी। हालांकि मंडे तक सच सामने आ जाना था, लेकिन क्या राधिका इस बात को एक्सेप्ट कर पाएगी कि आयशा ने उसके साथ में कितना गलत किया था। इशिका ने आह भरी और फिर वहां से जाने के लिए निकली। तभी उसे एहसास हुआ कोई उसके पीछे दौड़ कर आ रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो आयशा थी। आयशा ने उसके पीछे जाकर तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें एक फ्री की एडवाइस देती हूँ। राजवंश एम्पायर इस मामले को ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता है। यही मौका है, वहां से निकाल लो वरना बुरा फंसोगे। उसकी बातें सुनकर इशिका के चेहरे पर हंसी के भाव थे। आयशा ने उसका प्रोजेक्ट चुराया था और उसका सच सामने ना आ जाए ये सोचकर वो इस मामले को खत्म कर देना चाहती थी। इशिका ने आयशा की तरफ देखकर धीरे से कहा, यहाँ कोई नहीं है तो तुम्हें ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। हम दोनों ही अच्छे से जानते हैं कि किसने प्रोजेक्ट को चोरी किया है। आयशा अभी भी बेशर्मी से बोली, हाँ सबको पता है प्रोजेक्ट तुमने चोरी किया है। हमारे पास तो सबूत भी मौजूद है। तुम्हारे पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि तुमने अपनी चोरी इतनी सफाई से कर ली कि पीछे से कोई सबूत भी नहीं छोड़ा होगा? इशिका ने भौंहें उठाकर कहा। इशिका की बात सुनकर आयशा ने हंसते हुए कहा, तुम यहाँ डॉक्टर मर्चेंट की बात कर रही हो क्या? वो आकर तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करेंगे। तुम कितनी भोली हो ना, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन सब से कि कौन उनके नाम का कैसे इस्तेमाल कर रहा है। आयशा को यही लगता था कि डॉक्टर मर्चेंट अब तक इन सबसे अनजान है और कौन उन्हें जाकर बताने वाला है जो वो इन सब में पड़ेंगे। इशिका के पास फिलहाल वो इल्जाम सहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अगर इशिका खुद डॉक्टर मर्चेंट नहीं होती तो शायद ही डॉक्टर मर्चेंट इन सब के बारे में जान पाते। इशिका ने मुस्कुराते हुए कहा, गलत का रास्ता चुना है ना तुमने, तो अच्छाई की उम्मीद मत करना। इतना कहकर इशिका वहां से चली गई। उसके जाते ही आयशा की मुस्कुराहट धीरे धीरे खत्म हो गई और इस वक्त उसके चेहरे पर नफरत के भाव थे जो कि इशिका के लिए थे।
वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु इस वक्त एक मीटिंग के अंदर था। वो अभी भी राजवंश एम्पायर में था। मीटिंग खत्म हो जाने के बाद अभिमन्यु जब कॉन्फ्रेंस रूम से निकला तो वहां दरवाजे पर नजरें झुकाए हुए रोहन खड़ा था। अभिमन्यु को देखते ही रोहन जल्दी से बोला, अभिमन्यु मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए और तुम मुझे मना नहीं करोगे। दूसरी तरफ चलकर बात करते हैं, अभिमन्यु ने सख्त आवाज में कहा। थोड़ी दूर जाने के बाद जब रोहन को लगा कि वो मीटिंग अटेंड करने वाले बाकी एम्प्लॉयज और मेंबर से दूर आ गया है, तब उसने आज शाम को जो भी हुआ था उसके बारे में अभिमन्यु को बताया। सब बताने के बाद रोहन बोला, इशिका एक अंडर ग्रेजुएट है, हो सकता है कि जल्दी सक्सेस हासिल करने के लिए उसने गलत रास्ता अपनाया होगा। मैं उसे समझा दूंगा, आगे से वो ऐसा नहीं करेगी। इसकी वजह से कंपनी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। तुम्हारे आगे कोई कुछ नहीं बोलता है, तो तुम प्लीज मामले को अपनी तरीके से संभाल लेना। अभिमन्यु ने उसकी बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगा। रोहन उसके पीछे आ रहा था। रोहन ने प्लीडिंग वे में कहा, मैंने कभी अपने लिए तुमसे हेल्प नहीं मांगी, लेकिन इशिका बहुत टैलेंटेड है। ये उसके करियर की शुरुआत है, प्लीज़ इस बार थोड़ी सी मदद कर दो। अभिमन्यु ने सख्त निगाहों से रोहन की तरफ देखकर पूछा, तुम्हें क्या लगता है रोहन, क्या सच में उसने प्रोजेक्ट चुराया है? रोहन को समझ नहीं आ रहा था वो क्या जवाब दे, क्योंकि सारे सबूत इशिका के खिलाफ थे। उसे चुप देखकर अभिमन्यु लिफ्ट के अंदर गया और उसे वहीं पर छोड़कर पार्किंग एरिया में पहुंच गया था। पृथ्वी वहां उसका इंतजार कर रहा था। जब आसपास कोई नहीं था तब पृथ्वी ने काफी सावधानी से अभिमन्यु से पूछा, बॉस आपको क्या लगता है, मिस सिंघानिया ने वो प्रोजेक्ट चुराया है? अगर उसने नहीं चुराया है तो क्या डॉक्टर मर्चेंट ने उसका प्रोजेक्ट चुराया है? अभिमन्यु ने सर्द निगाहों से पृथ्वी की तरफ देखा और बिना कुछ बोले गाड़ी में जाकर बैठ गया। पृथ्वी अभी भी बाहर था। वो धीरे से बोला, लगता है सर उस पर कुछ ज्यादा ही यकीन करने लगे हैं, तभी उन्हें उसका सच दिखाई नहीं दे रहा है। पृथ्वी गाड़ी के अंदर आया और वो हॉस्पिटल की तरफ बढ़ने लगे। अभिमन्यु अपने ख्यालों में खोया हुआ था। वो जानता था कि इशिका कभी चोरी नहीं कर सकती और ना ही उसे चोरी करने की जरूरत थी। उसने अपने मन में कहा, एक बात तो तय है कि तुमने किसी का प्रोजेक्ट नहीं चुराया है, पर तुम्हारे पास प्रोजेक्ट था, वो भी डॉक्टर मर्चेंट का। तो क्या दिशांक राठौर ने तुम्हारी मदद की है? तुम अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने वाली थी, तो क्या दिशांक वो बॉयफ्रेंड है जिससे तुम शादी करने जा रही थी? अभिमन्यु अपने ख्यालों में खोया हुआ था। इस बीच वो हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। अभिमन्यु गाड़ी से उतरा और ऊपर जाने लगा। वो मिसेज वसुधा राजवंश के फ्लोर पर पहुंच चुका था। अभिमन्यु कमरे के अंदर जाता तभी उसने देखा इशिका उसी की तरफ आ रही थी। उसने बेबी पिंक सिंपल और कंफर्टेबल फ्रॉक पहना था। इशिका को देखते ही अभिमन्यु के चेहरे के भाव अपने आप नरम पड़ गए थे। इशिका के पास आते ही अभिमन्यु ने धीरे से पूछा, तुम्हें किसी तरह की हेल्प चाहिए? इशिका ने मुस्कुराकर नामे सिर हिलाकर कहा, नहीं मैं ठीक हूँ। इशिका के मना करते ही अभिमन्यु के चेहरे के भाव सख्त हो गए थे। वो अपने गुस्से को काबू करके बोला, तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत नहीं है, इसका मतलब तुम दिशांक राठौर के पास जा रही हो। ठीक है मानता हूँ, मैंने कुछ मामलों में अपनी लिमिट क्रॉस की है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम्हारी किसी तरह से मदद नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मुझे अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए दिशांक की ही जरूरत पड़ेगी, तो मुझे उसी के पास जाना होगा, इशिका ने जवाब में कहा। आइडेंटिटी प्रूफ? अभिमन्यु ने हैरानी से पूछा। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इशिका को अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करने की क्या जरूरत पड़ गई। वहीं इशिका खुद को सच्चा साबित करने के लिए अब अपनी डॉक्टर मर्चेंट वाली असली पहचान को सबके सामने लाने का सोच रही थी। कई बार सच्ची अभिमन्यु के लिए बहुत बुरा लगता है कि इशिका उसे कोई हेल्प नहीं लेती। कितना स्वीटली वो पूछ रहा था, कोई बात नहीं, नया नया प्यार है तो थोड़ी बहुत इग्नोरेंस तो झेलनी पड़ेगी ना, बेचारे को जलन भी हो रही है, पर डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। इसी बहाने इशिका की आइडेंटिटी शायद सबके सामने आ जाए। प्लीज पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा।